ओम शांति, ओम शांति। गायन है चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्व का भला। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों के लिए गायन है, तुम्हारी इस समय चढ़ती कला होती है। कितनी चढ़ती कला होती है, कितनी ऊंची हमारी तकदीर बनती है जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इतनी संपत्ति हमें मिलती है, माला माल हो जाते हैं, इसको कहेंगे चढ़ती कला। लेकिन तुम्हारी चढ़ती कला के कारण सबका भला हो जाता है, क्योंकि सबको मुक्ति मिलती है। अगर हमारी चढ़ती कला न होती तो सबको मुक्ति भी नहीं मिलती। तो उनकी चढ़ती कला है मुक्ति पाने में, और हमारी चढ़ती कला है जीवन मुक्ति पाने में। तो बाबा कहते हैं वो मुक्ति तो सबको मिलेगी, सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी, इस कलयुगी बंधनों से मुक्त हो जाएगी। और उसके लिए सब तैयार है ना, प्रकृति भी तैयार है, सब तैयार है। बाबा ने कहा आज क्या कहेंगे, प्रकृति को गुस्सा है, क्योंकि वो तो तैयार बैठी है विनाश करने लिए। तो ये विनाश कौन लाता है, ऐसे नहीं कि कोई किसी का दोष होगा, किसी का भी दोष नहीं होगा विनाश लाने में। ये प्रकृति का नियम है, ये ड्रामा का खेल है, इसमें सब नूंद है। इसीलिए कोई एक दोषी नहीं होगा, कोई भी दोषी नहीं होगा, क्योंकि ये बना बनाया खेल है। तो तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलेगी, और उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तो ये सब खेल है, इस खेल को समझने से कोई भी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। तो कुछ भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, बस खेल को देखते रहो साक्षी दृष्टा हो करके। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 20/12/2025 है। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो क्या होना चाहिए, ऊंची तकदीर बनानी बना रहे हैं बाबा, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कैसी हमारी चलन होनी चाहिए, बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसीलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। फलाने ने विनाश लाया, हम एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा सकेंगे, ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। तो ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। इतनी तमो प्रधान हो गई है प्रकृति, सब कुछ तमो प्रधान, तो प्रकृति को बहुत गुस्सा आया है चारों ओर। अब गुस्से में क्या करेगी प्रकृति, चारों ओर अर्थक्वेक होंगे, भूकंप आएंगे, मकान गिरेंगे, फ्लड्स आएगी, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब ये सब होना है, तो इसीलिए हमको क्या करना है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। बेहद का संन्यास आज बाबा जी का ये करना है। बेहद का संन्यास अर्थात इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। जब भी बाबा जी का ना मैं शब्द आता है तो मैं आत्मा याद करो, मेरा शब्द आता है तो मेरा बाबा याद करो, और कुछ याद ना आए। गीत है हाँ तो है ना, हमारी चढ़ती कला है तो कौन सा गीत होगा, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अब हमें तो गिरना नहीं है, हमें तो संभलना ही है। यहाँ भी देखो अब शांति भवन में आते संभल संभल के आते हैं ना, हाँ कोई गिरेगा तो नहीं ना, संभल संभल के आते हैं सब। ओम शांति। किन राहों पर चलना है, गुरु की राह पर चलना है। अब ये कौन सा गुरु है जिसकी राह पर चलना है, तो उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है ना, वाहे गुरु वाह गुरु। सिख धर्म में तो हर वक्त हम देखते हैं सिखों के मुख से निकलता है वाहे गुरु वाहे गुरु। हाँ तो वाह वास्तव में वाह गुरु, तो वाह गुरु को शॉर्ट कर दिया वाहे गुरु वाह गुरु। अब गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसके लिए वाह वाह निकलती है, किसकी महिमा गाएंगे। सतगुरु तो एक ही बाप है, भक्ति मार्ग में तो ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है कि सच्चा सतगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। वाहे गुरु ये वाह वाह किसकी मानी जाती है, केवल एक सतगुरु की। सच्चा सतगुरु है तो जरूर उसकी भेंट में झूठे गुरु भी होंगे ना, क्योंकि क्यों सतगुरु सतगुरु कहते हैं, केवल गुरु नहीं सतगुरु तो जरूर कोई झूठे गुरु भी होंगे। सच होता है संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं, बहुत आता है ग्रंथ में सच की महिमा, सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर है गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग वो कहाँ कहाँ का गाइड बनते हैं, आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। ये सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर जो तीर्थ है दुनिया में उन तीर्थों पर ये सतगुरु तो नहीं ले जाएंगे, वो तो सच्चे तीर्थों पर ले जाते हैं। ये सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग तो पावन बना न सके, वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि कैसे शिव बाबा सतगुरु हमें कैसे पावन बनाते हैं, हमें एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भाव मुझे याद करो, इसी से आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा कहते हैं वो जो गुरु लोग हैं वो तो पावन बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो कोई ऐसे नहीं कहते कि मामे कम याद करो, वो तो यही कहेंगे उनको याद करो उनको याद करो, तो वो कैसे पावन बनाएंगे, जिनको याद करना है वही पावन बनाएगा ना। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि माम एकम याद करो, भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु अर्थ का बिल्कुल पता नहीं है। अगर समझते हैं गुरु एक है, हाँ सतगुरु एक है, तो अपने को गुरु नहीं कहलाते, फिर अपने को गुरु कहलाते हैं, सतगुरु भी कहलाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर अपने आप को समझते कि सतगुरु तो एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, इसलिए गुरु कहलाते हैं, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। अब ये तो एक ही है, सतगुरु एक ही है, फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं, वो पहले नंबर के देवी देवताएं सब अभी लास्ट में हैं। तो बाप आकर इनों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको, अब इनों को ही जो शुरू शुरू में आए हैं देवी देवताएं वो अभी लास्ट में हैं, उनको ही फिर से बादशाही देते हैं, तो बाकी सबका क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है, क्योंकि बादशाही लेनी है, जब पहले पहले आए हैं अभी लास्ट में गए हैं उनको फिर से बादशाही देनी है, तो बाकी सबका क्या होगा, उन सबको वापस घर जाना है। इसीलिए सर्व का सदगति दाता एक को ही कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तुम पुरुषोत्तम बनते हो, हाँ तुम पुरुषोत्तम बनते हो और बाकी और कोई काम नहीं करते, बस एक ही लक्ष्य है सबका, बाकी जो व्यवहार है वो तो करते ही है, बाकी और कोई भक्ति मार्ग के यात्राएं वात्राएं बाबा कहते हैं वो अभी तुम न सब नहीं करते। ये बाप तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक ही है, ये बाप की ही महिमा है गति सदगति दाता। और वो गति सदगति कब मिलती है, संगम युग पर ही मिलती है। सतयुग में तो है ही एक धर्म, ये भी समझ की बात है ना, परंतु ये बुद्धि देवे कौन कि सतयुग में एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म है और सब धर्म की आत्माएं सब वापस जाएगी, पर ये बुद्धि देवे कौन जो ये समझे। तुम समझते हो बाप ही आकर के युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। अब किसको देते हैं श्रीमत, आत्माओं को देते हैं, शरीरों को तो नहीं देते ना, श्रीमत आत्माओं को देते हैं। वो बाप भी है सतगुरु भी है तो टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी तो सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं, केवल एक सतगुरु शिव बाबा ही ज्ञान सिखलाते हैं, बाकी तो सब गुरु भक्ति सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं, सदगति हो गई तो फिर इस पुरानी दुनिया में क्यों रहेंगे, चले जाते इस पुरानी दुनिया से। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है, बाप ने समझाया है अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है, पूरा हुआ है ना चक्र, अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे क्या मिसाल बाबा देते हैं, दुनिया खत्म होनी है, तुम्हारा चक्र समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब ये तो जाने वाला है, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कुछ घंटों का मेहमान है, बस अभी ये जाने वाला है। अब जैसे पता चल गया रिश्तेदारों को तो क्या कहेंगे, हाँ तो समझेंगे ना कि बस अभी ये जाने वाला है, तो जो मोह ममत्व उनमें उसमें था वो धीरे धीरे निकलता जाएगा, क्योंकि पता है जाने वाला है, तो कहेंगे अब ये तो जाने वाला है, इसको याद क्या करेंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है ये बच जाएगा ये उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि सब ऑर्गन्स फेल होते जा रहे हैं, बीपी लो होता जा रहा है। तो बस अभी थोड़ा सा समय हार्ट भी खत्म हो रहा है, सब धीरे 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 सब खत्म हो रहा है, तो उम्मीद फिर टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। आजकल नहीं करते, पहले करते होंगे। अभी बस गया कि गया, तो उसको हॉस्पिटल में भी है तो वहां से ले जा करके गंगा पर ले जाते हैं और उसका उसको जैसे मुंह पानी में ही डालते हैं, गंगा में ही डालते हैं कि अभी इसकी सदगति होगी, तो जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा, क्योंकि सबको जाना है, सबको खत्म होना है। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है, सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगे, बाढ़ आएगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। अब ये सब कौन कराते हैं? क्या कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते ना, वो तो दुख हरता सुख करता है, तो बाबा कैसे दुख देंगे? बाप तो नहीं कराते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। तो दोष किसका? ड्रामा का। अब किस पर केस करें? बाप तो कराते नहीं है, ड्रामा कराता है, तो करो केस ड्रामा पर कि ड्रामा इतना सबको दुख दे रहा है। हाँ, अभी ड्रामा पर आप केस कर सकेंगे? कैसे करेंगे? कोई मनुष्य थोड़ी है जो उस पर केस करेंगे। वो तो खाम खां शंकर को शंकर का नाम बदनाम कर दिया कि उसने आंख खोली और विनाश किया। तो बाबा कहते कोई पर भी दोष नहीं देंगे, ड्रामा का प्लान ही ऐसा बना हुआ है, इसीलिए किसी का भी दोष नहीं होगा। ड्रामा का प्लान ही ऐसा बना हुआ है, पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलमिटीज आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, विनाश होने का ही है। भगवान उवाच, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। हद का नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बेहद का संन्यास। अब तुम कहेंगे, अभी तो हम बच्चों के मुख से क्या निकलता है, वाह सतगुरु वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया है ना, सभी के मुख से यही निकलता है ना, वाह 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 वाह। तो वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। हम तो वाह करते हैं, परंतु हमारी चलन अगर अच्छी नहीं है तो बाबा की निंदा ही होगी ना, भले कितना भी हम वाह करें। तो उनकी निंदा न हो, ऐसी चलन नहीं चलो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। ये है जीते जी मरना, देही अभिमानी बनना, अशरीरी बनना, ये है जीते जी मरना। देह से न्यारी आत्मा बन, बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, हाँ तो सिख धर्म में बहुत है, जैसे गुरुद्वारे में एंटर हुए, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हाँ तो बाबा कहते ये तो बहुत अच्छा कहते हैं ना, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है, लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप भी एक ही है, सतगुरु भी एक ही है, तो बाप भी एक ही है सारी सृष्टि का। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसको पता नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं कैसे होता है, शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा, कैसे आएगा पीपल के पत्ते पर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, हाँ सारी जो खत्म होगा तो धरती जो है वो एक पीपल के पत्ते की तरह ही हो जाएगी, बाकी सब पानी में, और वो पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण का जन्म होगा, वो भारत, हाँ तो भारत पीपल के पत्ते की तरह हो जाएगा। अभी भी अगर हम देखें ना, तो अगर ये सारे छोटे छोटे देश जो अलग हो गए हैं भारत से, वो सब को मिलाएं तो बिल्कुल पीपल के पत्ते की तरह ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता है, ऐसे नहीं केवल श्री कृष्ण की महिमा की तो हम उनके साथ सतयुग में आ जाएंगे, केवल महिमा करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें अभी चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए है, शरीर ने लिए, ऐसे तो नहीं कि नहीं, शरीर तो एक जन्म के लिए ही मिलता है फिर दूसरा शरीर मिलता है, पर आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे फलाने व्यक्ति ने 84 जन्म लिए हैं, उस व्यक्ति ने वो शरीर ने 84 जन्म नहीं लिए लेकिन उनकी आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। हरेक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है, तो ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए है, वो शरीर का नाम नहीं लेंगे, नहीं आत्मा ने 84 जन्म लिए है। शरीर तो बदलते जाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं, आदि में था ही, क्या था आदि में, देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में क्या आया, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं, चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं, कईयों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, दुनिया वाले भी कहते हैं, कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया, दूसरे शब्दों में कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी ये दुनिया रची और हमको इस संसार में भेजा, क्या पड़ी थी भगवान को। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, कुछ पड़ी थोड़ी थी भगवान को, ये तो अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है, बस ये जरूर समझना है। मनुष्य होकर अगर ये नहीं जानते, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का अगर मनुष्य होकर नहीं जानते, तो उनको बाबा कौन सा टाइटल देते हैं, नास्तिक, वो नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। IAS एग्जाम देते हैं ना तो उनको बहुत नशा रहता है, हम IAS एग्जाम दे रहे हैं, हम तो जाकर के SDM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, बड़ा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जानने से तुमको कितना ऊंचा पद मिलेगा, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े थे बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। कैसे बने लक्ष्मी नारायण? अपने पूर्व जन्म में ये राजयोग सीख कर लक्ष्मी नारायण बने हैं, मनुष्य से देवता बने हैं। तो इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो कि सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, ये तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण सतयुग के आदि में थे, लेकिन इन्होंने जन्म कैसे लिया। तो बाबा कहते बड़े बड़े विद्वानों आदि से भी पूछो कि सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो श्री लक्ष्मी नारायण राजाओं के राजा है ना, द्वापुर के राजाएं भी उनको पूजते हैं, तो वो राजाओं के राजा है। तो ये बाबा कहते ये तो भगवान ही राजयोग सिखाता है जिससे वो राजाओं का राजा बनते हैं। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है, गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण तो बने नहीं कि द्वापर युग से गीता पढ़ते आए, परंतु बाबा कहते फायदा नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो बने नहीं। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं, तुम कहते हो हाँ, तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, याद आता है ना, 5000 वर्ष पहले भी हम बाबा से मिले थे। क्यों मिले थे भाई, क्यों मिले थे? हाँ, स्वर्ग का वर्षा लेने, चढ़ता है नशा, हाँ स्वर्ग का वर्षा लेने बाबा से मिले थे, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए मिले थे। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं ये जरूर सीख कर आते हैं। बाबा के पास पार्टी आती थी तो पहले ही टीचर उनको सिखा देती थी कि बाबा आपसे पूछेंगे, बच्चे पहले भी कभी मिले हो, तो यही कहना हाँ बाबा 5000 साल पहले भी मिले हैं। तो बाबा कहते छोटे बड़े बूढ़े हाँ बाबा से मिलने आते हैं, पार्टी आती है, ये जरूर सीख कर आते हैं, टीचर उनको सिखा देती है पहले से। एम ऑब्जेक्ट ही ये है हमारी, सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना, ये भी तुम समझते हो, राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको क्या अनुभव होता है, जो ये सब बातें अच्छी रीति समझ लेते हैं कि अभी राजाई स्थापन हो रही है, हमारी इतनी ऊंची तकदीर बन रही है, तो बाबा कहते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है ना, सबको आंतरिक खुशी, किसी की भी खुशी कम ना हो, कुछ भी होने दो, हमारी आंतरिक खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए, उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हाँ, बाबा पूछेंगे ना कि हिम्मत है राजाई लेने की, हिम्मत है राजाई लेने की, हाँ भाई हाथ उठाओ जिनको हिम्मत है, अरे वाह सब बन जाएंगे राजा महाराजा, हाँ वेरी गुड, बाबा को कितनी खुशी होती है मेरे बच्चे सब राजा बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की, तो बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही इसीलिए नर से नारायण बनने के लिए, इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत तो लगती है, 63 जन्मों का देह अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, तो एकदम से तो देही अभिमानी नहीं बन सकेंगे, तो मेहनत लगती है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं, वो देह के नाम रूप में बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, नाम रूप से न्यारा होना है। अब ये आत्मा जो शब्द बाबा कहते ये भी तो नाम है ना, कईयों के नाम ही आत्मा होते हैं, आत्मा हाँ आत्मा। तो घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, और बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया जाता है। वाह गुरु भी इनको ही कहते हैं, सतगुरु को ही वाह गुरु वाह गुरु कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो, हाँ बहुत आते हैं सिख धर्म के भी, बाबा का ज्ञान लेते हैं, बाबा के बन जाते हैं। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहिब सुखमणि में है। ये दो मूल किताबें हैं, हाँ पुस्तकें हैं सिखों की, जप साहिब और सुखमणि। ये बड़े अक्षर ही दो है, जपो साहिब को तो सुख मिले, ये अक्षर ही बड़े दो है। तो बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, कैसे मिलेगा 21 जन्मों के लिए सुख, बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं, कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर के सिख बने, सब धर्मों में तो कन्वर्ट हो गए ना कई, तो फिर बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो फिर देवता बनते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो फिर क्या हुआ, तुम फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को ये पता ही नहीं। बाबा वैरायटी धर्मों का झाड़ जब बताते हैं तो और धर्मों के लिए क्या बताते हैं, कि और किसी को पता ही नहीं कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया है नई आत्मा को कर्म भोग हो नहीं सकता है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले, वो तो दिखाते ना जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ाया। अब बाबा कहते हैं जीसस और क्राइस्ट, जब तक उसने धर्म का प्रचार नहीं किया तब तक वो क्राइस्ट नहीं था, तब तक केवल जीसस था। और उसमें ही बताते 30 साल तक उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं था, पर 3 साल में, 33 साल की उसकी उम्र थी जब उसको सूली पर चढ़ाया, पर अंतिम 3 साल में उसको ज्ञान मिला। ऐसे नहीं कि कोई जन्म से ही उनको ज्ञान था, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा उसी समय प्रवेश हुई होगी। जैसे गुरु नानक के लिए भी कहते हैं, वो तो एक बिजनेस करता था, 13 13 13 13 जैसे ही कहा हो गया बाबा का, हाँ भगवान का हो गया। गुरु नानक की आत्मा ने कैसे प्रवेश किया उनमें, पहले तो कुछ और होगा, नानक ही था फिर गुरु नानक कहलाया। तो बाबा कहते क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले, वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है परम धाम से। जिसमें आकर प्रवेश करती है उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं, जीसस को चढ़ाया, क्राइस्ट को नहीं। वो तो जाकर दूसरा जन्म ले, बड़ा पद पाती है। क्राइस्ट की आत्मा तो समझो निकल गई और जाकर के दूसरा जन्म लिया, फिर उनको बड़ा पद मिलता है क्रिश्चियन धर्म में, क्योंकि स्थापना तो कर दी ना उसने, फिर वो पोप जाकर बनते हैं। तो दूसरा जन्म ले, बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं, कितने पोप होके गए हैं क्रिश्चियन धर्म में 2000 साल में, पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है, कौड़ी तुल्य बन गई है ये सारी दुनिया। अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, हीरे तुल्य बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उनों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं ना, कोई पीढ़ियां नहीं चलनी है, और इसीलिए कि उनके वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, वो तो हाथ खाली जाएंगे ना, उनके कोई वारिस खाएंगे, और तुम बच्चे हाथ भरपूर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने लिए ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते हैं ना, तुम ज्ञान रत्न इकट्ठे करते हो, यही तुमको मालामाल बनाते हैं। तुम भरपूर होने लिए ही ये पढ़ रहे हो। ये भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही फिर आएंगे, थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। हाँ, बाबा को सब इकट्ठे हो जाए ब्राह्मण और फिर वो सब देवता बने इकट्ठे, तो बाबा देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हो। हाँ, दादी को बहुत आता था कैसे 1,00,000 की सभा हो एक साथ, 1,00,000 की सभा हो। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कितने आएंगे, चलो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 कितने आएंगे, लेकिन 1,00,000 की सभा चाहिए। तो दादी ने सब बड़ी बहनों को कहा, तो हमारी सल्ला दीदी थी, उसने सबसे पहले हाथ उठाया, हाँ दादी हम लाएंगे 1,00,000, क्या बड़ी बात है। और उसने सबसे पहले 1,00,000 की सभा इकट्ठी की। स्टेडियम में तो 1,00,000 जुड़ जाते हैं, तो 1,00,000 से भी ज्यादा आए थे जब प्रोग्राम हुआ था। तो दादी जी देख के इतना खुश हो गए, फिर मुंबई में किया, मुंबई वाले भी कम थोड़ी है, फिर उन्होंने किया। तो देखो ऐसे 1,00,000 की सभाएं भी कितनी हुई, जहाँ दादी जाते थे और सभा में संबोधन करते थे। तो बाबा कहते हैं तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। पहले बहुत कोशिश की, हर सेंटर को फॉर्म भेजते थे कि तुम्हारे कितने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कितने कभी कभी आने वाले हैं, कौन संपन्न संपर्क में है, सबके नंबर लिखो। तो नंबर लिखते थे, फिर वो एक रिपोर्ट बनाते थे, फिर सबको भेजते थे कि इतने विद्यार्थी है। अभी तो कहाँ गिनती कर सकेंगे, थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, हम सब सेवा पर है, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा भी सर्विस पर है, बाबा सर्विस बिगड़ तो रह नहीं सकते, शिव बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते, रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर रोज सुबह मुरली चलाते, तो रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं ना, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है। हम तो देखते कई सेंटरों पर सुबह 4 बजे भाई बहने आ जाते, जो नजदीक रहते होंगे वो आते होंगे, दूर वाले तो नहीं आ सकते। पर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, बहुत देर रात को भी फिर एक क्लास में आना वो भी नहीं होना चाहिए। क्यों बाबा कहते हैं बहुत रात, देर रात को बाबा कहते हैं ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है, अब कहीं जाना भी नहीं है। कहीं जाते हैं ना रात को ट्रैवलिंग करते हैं, समझते हैं हम सुबह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जमाना बाबा कहते खराब है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है, इसीलिए अब खराब होती जाती है तो बहुत दूर भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए बाबा ने क्या प्रबंध कराया, इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, ऐसा होना चाहिए, सहज हो जाए। हाँ, कई कहते थे बाबा हमारा घर तो बहुत दूर है। अच्छा, तुम्हारा घर दूर है तो बनाओ गीता पाठशाला घर में, बहुत दूर सेंटर है तो नहीं जा सकते, तो गीता पाठशाला बनाओ, कहीं आएंगे आपके घर में, वो भी बाबा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अंत में बहुत ऐसा ही खतरनाक स्थिति आएगी जो घर से भी नहीं निकल सकेंगे, एक गली से दूसरे गली में भी नहीं जा सकेंगे, ऐसी भी हालत आनी है। जब कर्फ्यू होता है तो क्या होता है, खिड़की से बाहर भी नहीं झांक सकते क्योंकि शूट एट साइट, अगर बाहर भी झांका ना तो भी नीचे वो आर्मी वाले गोली मार देंगे, इसीलिए खिड़कियां भी बंद करके रखनी होती है जब कर्फ्यू होता है। तो बाबा कहते हैं जो घर से निकले सेंटर पर आए सहज हो जाए, इसीलिए वो भी नहीं होगा। तो तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। तो बाप समझाते तो बहुत सहज है, ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया तो होगी नहीं, प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है, मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं, बहुत गुरु लोग भी माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे, फिर वो कैसे माला फेरते हैं, वो गऊ मुख बनाते हैं, थैली बनाते हैं गाय के मुख के, और फिर उसमें माला रहती अंदर और हाथ उस गऊ मुख में होता है और माला फेरते जाते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, ये काम महाशत्रु दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं, ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, छीछी है, बाबा को बहुत कहते हैं, अब इतनी गंदी दुनिया हो गई है तो बाबा को बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम तो बहुत तंग हो गए, जो इस दुनिया से तंग हो गए हाथ उठाओ भाई, कोई नहीं तंग हुआ है, जो एक दिन हाथ उठा रहे क्या है? कोई नहीं तंग हुआ है सच्ची। अब बाबा तो कहते हैं, बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम तंग हो गए हैं, तो बाबा हम बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धरो, धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातरी है, स्थापना होनी ही है, खातरी है। हाँ बाबा कितना टाइम और, कितना टाइम और, ये बाबा से पूछो मत, बाबा कब विनाश होगा ये पूछो मत, खातरी करो कि होनी ही है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी अंदर में, जो खातरी है ना कि आप हाँ मालूम है होनी ही है, ये खातरी तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, वापस जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यही पैगाम सबको देना है, भगवान का यही पैगाम है कि उनको याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो घर चले जाएंगे। गुरु नानक ने भी ऐसे ही किया ना, ऊपर की ओर इशारा, बस उसको याद करो, तो परम धाम को याद करना पड़े। तो बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यही पैगाम सबको देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। हाँ ऐसे नहीं कि और कोई पैगंबर मैसेंजर आकर के कहेगा कि उनको याद करो, क्योंकि बाबा ही पैगंबर मैसेंजर है, वो ही कहता है कि मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाओगे। वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते, धर्म पिता ही नहीं है पैगंबर, वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं आत्माओं को, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं, तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, अब तुम्हारी चढ़ती कला हो गई तो तुमको तो नया विश्व चाहिए, तुमको तो सतयुग चाहिए, तो फिर कलयुग के मनुष्य कैसे रह सकते इस दुनिया में। तो तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब कोई हमारे कारण सबको ऊपर जाना है, परंतु बाबा कहते इसमें भी किसी का भी दोष नहीं है, ये सब बना बनाया ड्रामा है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है, ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने लिए पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो, हर कदम में निरंतर याद द्वारा कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार अनुभव करते रहेंगे, कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। भले कष्ट तो आएंगे लेकिन वो कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि है तो सब मन की स्थिति ना, कष्ट भी किसको लगता है किसको नहीं लगता है, पर है तो मन की, मन में जो सोचता है वही अनुभव होता है। तो संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता, यदि कोई कष्ट आता भी है तो क्यों नहीं कष्ट लगता है, क्योंकि यदि कोई कष्ट आता भी है तो वो बाप की याद दिलाने लिए आता है कि बाबा को और ज्यादा याद करो, इसलिए आता है। जैसे मिसाल क्या दिया, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी उनके बचाव का साधन होता है, तो ये जो कष्ट है ये हमारे बचाव का साधन है, हमको बाबा की याद दिलाता है। कईयों को दर्द बाबा, हाँ उससे बाबा याद आता है ना, तो इसीलिए बाबा याद आता है। तो कष्ट जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफ और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, बाबा से कितना प्यार मिला क्या प्राप्ति हुई ये तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ, ये शक्ति कितनी मिली वो भी अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कैसे करो, जैसे साकार में देखा लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा, बाबा जो भी बाबा के पास आते थे बस वरदान देते थे, बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही, बैलेंस भी खूब रखा अंत तक सेवा की। तो बाबा कहते हैं बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही, ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का। बाबा ने तो यही कहा ना, अब तुम्हारा पार्ट है बस भाषणा देने का। भाषण करने वाले बहुत आ जाएंगे, तुमको भाषणा देनी है। तो विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा, चाहे नैनों से चाहे मस्तक मणि द्वारा, सबको ब्लेसिंग दो, वरदान दो, शक्ति भरो, ज्यादा आवाज में भी नहीं आओ। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।